الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو یہ آیات تلاوت کی گئیں ان کا ہم نے پچھلی کلاس میں ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا. یہی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا ہی سلسلہ، بلکہ درس تفسیر کا سلسلہ جو ہے وہ جمعے کی مجلس کے اندر بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر بھی اس کو ہم پڑھتے ہیں یا اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو پچھلی مجلس جنہوں نے سنی تھی جمعے والی، تو اس کے اندر انہوں نے سنا ہوگا کہ یہ جو قل کل یعمل علی شاکلتہ، جو اس سے پچھلی والی آیت تھی، تو اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے اوپر، تو اب ہر کوئی کے اندر تو پھر اللہ رب العزت بھی شامل ہے کہ ہر کوئی اللہ رب العزت کی اپنی ایک ذات ہے، اپنی ایک ہستی ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا شاکلہ یعنی اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ، یہ ساری کی ساری کتنی اچھی ہیں، کتنی بہترین ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، اور کتنی نقص سے پاک ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہمارا شاکرہ کتنا برا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے احسانات کی، اس کی نعمتوں کی ہم قدردانی نہیں کرتے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کتنا درگزر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم اتنے اتنے جلد باز ہیں اور اتنے جو ہے وہ غافل ہیں، اتنے اپنے اوپر احسانات کو اللہ تعالیٰ کے بھول جاتے ہیں کہ ایون اگر اللہ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر کوئی ایک آزمائش آ جائے تو ہم اللہ رب العزت کی اس بات کو بھی درگزر نہیں کرتے. ہم ایون اپنے پروردگار کو بھی کے ساتھ بھی درگزر کا کام نہیں دیتے کہ بھائی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں، نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، اگر کوئی ایک آزمائش آ بھی گئی تو اس کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم ہنسی خوشی جو ہے وہ قبول کر لیں. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. یعنی اللہ نے اگر ہمیں کوئی ایک غم دے بھی دیا تو وہ بھی ہمیں عزیز ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایمان والا اس طریقے سے سوچتا ہے تو پھر اس کے لیے غم بھی نعمت ہی بن جاتا ہے، غم بھی نعمت ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اس کے پروردگار سے قریب کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی چاہیے کہ زبان حال سے بھی اور زبان فم سے بھی، यानी जुबानें मुंह से भी हैं, मुंह के जुबान से भी और दिल की जुबान से भी, हर वक्त ये कहते रहें रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, कि मैं अपने रब से राजी हूँ। रब से राजी होने का मतलब क्या होता है कि मैं रब के फैसलों से राजी हूँ, रब की कदा से राजी हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबियं व रसूला, और मैं नबी अलैहिस्सलाम से बहैसियत नबी और रसूल के राजी हूँ। यानी जो रास्ता, जो तरीक़ा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है, मैं उसी तरीके पर राजी हूँ, मैं उसी तरीके ही के ऊपर चलता रहूँगा, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मर्जी पूरी हो रही हो, चाहे मेरी मर्जी पूरी ना हो रही हो, चाहे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, चाहे लोग मुझे मलामतें कर रहे हों, मैं नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर ही चलता रहूं। राइट, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियं व रसूला व बिल इस्लाम दीना, और मैं इस्लाम के साथ राजी हूं कि यही मेरा दीन है, मैं किसी और दीन के ऊपर, किसी और तरीके के ऊपर राजी नहीं होऊंगा। तो हम जुबान हाल से और अपने मुंह की जुबान से बार बार यही चीज पढ़ते रहें, अदा करते रहें, खुसूसन जब कोई नागवार मामलात हमारे साथ पेश आ रहे हों। ये जो हम कहते हैं ना कि जी मेरे ऊपर तो नागवार मामलात खत्म ही नहीं हो रहे, हर वक्त ही नागवार मामलात पेश आते रहते हैं, हर वक्त ही जो है वो मैं आजमाइश में ही रहता हूँ या रहती हूँ, तो उसकी वजह जो है ना वो ये नहीं होती कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर आजमाइश के ऊपर आजमाइशें भेजे चले जा रहे हैं और नेमतें भेज ही नहीं रहे, ये वजह नहीं होती। और उसकी वजह ये होती है कि हम नेमतों को देख ही नहीं रहे होते, हम नेमतों की तरफ नजर ही नहीं कर रहे होते, और हम सिर्फ जो है ना वो कंप्लेन पे कंप्लेन करे चले जा रहे होते हैं, शिकायतों पे शिकायतें करे चले जा रहे होते हैं। इस वजह से जो आजमाइशें होती हैं ना वो हमें हमें बढ़ी हुई नजर आती हैं, वो हमें बढ़ती हुई नजर आती हैं, और वो हमें हर तरफ आजमाइशें ही आजमाइशें नजर आती हैं। ठीक है, तो ये हकीकत नहीं होती बल्कि ये हमारी निगाहों का धोखा होता है कि हर तरफ आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, क्योंकि शुक्र करना अभी तक आपने शुरू ही नहीं किया। अगर आप शुक्र करना शुरू करते हैं ना तो आपके ऊपर नेमतें बढ़ जाती। अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो मजाक नहीं कर रहे हमारे साथ जब फरमाते हैं वला इन शकरतुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा। ये अल्लाह ताला नाउज बिल्ला झूठ नहीं बोल रहे हमारे साथ, अल्लाह ताला तो बढ़ाएंगे, मसला ये है कि हमने शुक्र ही नहीं किया अभी तक, हम शुक्र करना सीख के नहीं दे रहे। राइट, तो इसके ऊपर हमें तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैंने आज तक आपका शुक्र अदा करना सीखा ही नहीं, अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला का शाकिरा और हमारा शाकिरा, ठीक है, तो इसके ऊपर फिर पूरा बयान मौजूद है, अगर आपको मौका नहीं मिला था वो मजलिस सुनने का तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगी, तो उसको फिर आप सुन लीजिएगा। इसके बाद फिर जो आयात हमने अभी पढ़ी थी उनका तर्जुमा भी पढ़ा था, और उनके अंदर खुलासे तफसीर में थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा था कि अगर हम चाहें तो जिस कदर आप पर हमने वही भेजी है, ठीक है ना, ये जो फरमाया था ना वला इन शिना, अगर हम चाहें लनज़हबन्ना, जरूर बिल जरूर हम आपसे ले लें, हम ले जाएं बिल्लज़ी अवहैना इलैका, उसको कि जो कि हमने आपकी तरफ वही किया है, हम उसको आपसे छीन लें। ठीक है, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा था कि और इसके ज़रिए जो हम यानी हमने जो आप पर वही भेजी है और इसके ज़रिए आपको जो इल्म दिया है ये सब सल्ब कर लें। ठीक है, फिर इस वही के वापस लाने के लिए आपको हमारे मुकाबले में कोई हिमायती भी ना मिले। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं हमारी तालीम के लिए। ठीक है ना, क्या तालीम अल्लाह ताला हमें इससे दे रहे हैं कि देखें जब किसी इंसान को इल्म मिल जाता है ना, जब किसी इंसान को इल्म मिल जाता है तो इल्म का मिल जाना जो है ये उसके लिए कहीं किसी धोखे का सबब ना बन जाए, उसके लिए धोखे का सबब ना बन जाए। क्योंकि जब इल्म, इल्म जो है ना, ये क्या है, इल्म क्या है, ये अमल का सबब है। इल्म क्या है, ये अमल का सबब है। ये वो मीन्स है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान कोई अमल करता है, ठीक है। तो इल्म जो है ना, ये सबब है, ये सबब है, ठीक है। तो जब किसी इंसान के पास कोई सबब आ जाता है ना, ठीक है, तो शैतान उसके पीछे लग जाता है, शैतान उसके पीछे लग जाता है, ठीक है। किस तरह से उसके पीछे लगता है कि अब तुम्हारे पास जो है ना, ये सबब मौजूद है, अब तुम इसकी बुनियाद पर जो चाहो वो कर सकते हो, अब तुम इसकी बुनियाद पर कर सकते हो, ठीक है ना। हर चीज का कोई ना कोई सबब होता है। इल्म जो होता है वो अमल का सबब होता है, और इसी तरीके से इल्म जो है वो इज्जत का सबब होता है। जब किसी के पास इल्म होता है तो उसकी लोग इज्जत करते हैं कि हाँ भाई, उसको तो बड़ा मालूम है, उसको तो बड़ी चीजें पता है, ये तो बड़ा अल्लामा है, ये तो बड़ा जहीन है, फतीन है, राइट। तो इल्म की वजह से इज्जत भी आती है, इल्म की वजह से इमामत आती है। कभी ऐसा भी होता है कि इज्जत देते देते लोग उसको अपना इमाम बना लेते हैं, अपना लीडर बना लेते हैं, राइट। तो दुनिया के अंदर इमामत, उसका सबब जो होता है वो इल्म होता है, लीडरशिप, लीडरी, इसका सबब इल्म होता है, ठीक है ना। इज्जत, बुजुर्गी, इसका सबब इल्म होता है, और इल्म के सबब से कभी मालो दौलत भी आ जाता है, मालो दौलत का सबब भी आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब इल्म होता है तो फिर लोग जो है ना, वो फिर हदिये भी देते हैं, फिर पैसे भी निछावर करते हैं, तो मालो दौलत भी इल्म की वजह से मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, शैतान के लिए आसान हो जाता है किसी इंसान को धोखे में मुब्तला करना कि देखो, ये इल्म तो तुम्हें तुम्हारी मेहनतों की वजह से मिला है, ये इल्म तो तुम्हें तुम्हारी जहानत की वजह से मिला है, ये इल्म तो तुम्हें तुम्हारी यकसुई की वजह से मिला है, कि तुम किताबें जो है वो बड़ा यकसुई के साथ पढ़ा करते थे, ठीक है ना। इस तरीके से वो धोखे में मुब्तला करके वो किस चीज को उसकी निगाहों से ओझल कर देता है, किस चीज को उसकी निगाहों से छुपा देता है कि देखो, ये इल्म ये तुम्हें अल्लाह ने दिया है, ये सबब जो है ना, ये तुम्हें मुसब्बिबुल असबाब ने दिया है, ये तुमने खुद नहीं कमाया है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की देन है, राइट। अल्लाह ने तुम्हें दिया है, ये भुला देता है। इंसान समझता है कि ये उसकी अपनी जाती मिल्कियत है, जो कोई उससे नहीं छीन सकता, बस एक दफा उसके पास आ गई, अब कोई उससे नहीं छीन सकता, अब वो उससे जो चाहे करे, राइट। इंसान इस धोखे में मुबतला हो जाता है शैतान की वजह से, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो हमें ये बात याद दिला रहे हैं, हमें ये बात याद दिला रहे हैं कि देखो, ये जो इल्म तुम्हें मिला है ना, ये इल्म तुम्हारी अपनी जाती मीरास नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जाती मिल्कियत नहीं है कि कोई तुमसे छीन नहीं सकता, हम ही तुम्हें देने वाले थे और हम ही तुमसे इसको वापस छीन सकते हैं, हम तुमसे इसको वापस भी ले सकते हैं। और अगर हमने फैसला कर लिया ना वापस लेने का, तो फिर कोई माई का लाल तुम्हें ये वापस नहीं लौटा सकता, कोई तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता, ठीक है। थुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, ठीक है। फिर हमारे खिलाफ जो है ना, वो कोई तुम्हारी मददगार, तुम्हारा मददगार नहीं बन सकता। तो इसको अपने, जिसको हम उर्दू जुबान में बा मुहावरा है, मुहावरतन कहते हैं ना, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, राइट, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ठीक है ना। हमने तुम्हें दिया है और तुम इसको फिर हमारी, यानी हमारे शुक्र में इस्तेमाल करो, हमारी इबादत के लिए इस्तेमाल करो इस इल्म को, ठीक है, ये तुमसे वापस भी लिया जा सकता है। तो ये इतनी अहम बात थी, इतनी अहम बात थी कि देखें, इस अहम बात को हम तक पहुंचाने के लिए कि हमारे जो है ना, ये कहते हैं ना, हमारे दिमाग में ये आ जाए, हमें ये बात समझ में आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए अपने हबीब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी ले ली। अपने हबीब अलैहिस्सलाम को गोया के ना मिसाल बना करके हमारे सामने पेश कर दिया कि देखो, इवन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के साथ भी यही मामला है कि मैं उनका भी इल्म जो है वो वापस ले लूं तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, मेरे हबीब की भी कोई मदद नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। तो तुम किस खेत की गाजर बोल रही हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को, ठीक है ना? तो इसको अपनी जाति मीरास मत समझना, इसके ऊपर जो है ना वो इतराना शुरू मत कर देना इस इल्म के ऊपर, ठीक है? बल्कि ये याद रखना कि मैंने ही तुम्हें ये दिया है और मैं तुम्हें तुमसे इसको वापस भी ले सकता हूँ, ठीक है? तो इसी सूरत के अंदर, बल्कि पीछे भी हमने, मुझे याद आ रहा है कि हमने पीछे भी इसी तरह की, हाँ वो जो वो वाली आयात थी ना, व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरिया अलैना गैरा व इज़ल लत्तखज़ूका खलीला वलौला अन सब्बतनाका लक़द किदत तरकनू इलैहिम शैअन क़लीला। पीछे भी अल्लाह ताला ने यही, यानी यही तरीका इस्तेमाल किया था हमें बात समझाने के लिए कि अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सामने रखा, ठीक है ना, और उनसे फरमाया कि अगर आपने इन काफिरों की बात मान ली और इस वही को तब्दील कर दिया उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि नसीरा, ठीक है ना? यही असलूब बयान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे भी इस्तेमाल किया है इसी सूरत के अंदर, चंद आयात पीछे, आयत नंबर 75 थी वो, ठीक है? तो फिर जो है ना हम आपको दुगना मजा चखाते जिंदगी में भी और मरने के बाद भी, फिर आप हमारे वास्ते, तो फिर अपने वास्ते हम पर मदद करने वाला कोई ना पाते, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता था फिर हमारे खिलाफ, ठीक है ना? और फिर इसी तरीके से अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सामने रख करके फिर जो है यही वाली बात, इसी तरह की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको, इस इल्म को आपसे वापस ले लेते ना, वही ये इल्म है ना, राइट? ये वही क्या है, ये इल्म है जो कि नबी अलैहिस्सलाम को मिला, अगर हम वापस ले लेते तो फिर किसी को आप अपना वकील नहीं पाते। वहां पे नसीर का लफ्ज है, यहाँ पे वकील का लफ्ज है, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। नसीर जो है वो मदद करता है, वकील जो है वो किसी के बिहाफ के ऊपर किसी का केस लड़ता है, वकील केस लड़ता है ना किसी का अदालत में जा करके, तो आपको कोई वकील नहीं मिलता, ठीक है ना? तो हबीब अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा करना ही नहीं था, ना पीछे वाला काम करना था ना ये वाला काम करना था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाए, ठीक है ना? किसको बता रहे हैं सारी बातें, हमें बता रहे हैं, लेकिन किस अंदाज में बता रहे हैं, अपने हबीब अलैहिस्सलाम को गोया के नऊज़ बिल्लाह बात समझाने के लिए खाली, या जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे बात समझ में आए कि हबीब अलैहिस्सलाम को कटहरे में रख करके, हबीब अलैहिस्सलाम को गोया के सामने मॉडल बना करके बात समझा रहे हैं, क्या मतलब? क्यों? क्योंकि ये इतनी अहम बात है, इतनी अहम बात है, इतनी अहम बात है कि अल्लाह ताला ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया हमें हमारे सिस्टम में उतारने के लिए, ठीक है? पीछे कौन सी वाली बात थी, पीछे कौन सी वाली बात थी, दीन की हिफाजत वाली बात, दीन की हिफाजत वाली बात, राइट? वो कितना अहम है। और दूसरी यहां पर कौन सी वाली बात हो रही है कि इल्म की कदरदानी वाली बात, इल्म के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाली बात। इन दोनों बातों को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो इंसान जो है वो असबाब मिल जाते हैं उसको तो वो धोखे में पड़ जाता है। हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं कभी भी धोखे में ना पड़ जाऊं, मैं असबाब के होने की वजह से धोखे में ना पड़ जाऊं, ठीक है ना? माल ये एक सबब है, माल मिलता है तो माल की वजह से फिर बड़े जो है वो चीजें मिलती हैं, है ना? माल से फिर आप चीजें खरीदते हैं, अच्छा सा घर खरीदते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छे अच्छे लिबास खरीदते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो तरीके से सफर करते हैं, ठीक है? तो माल के अंदर के माल की वजह से भी जो है ना वो धोखे में मत मुब्तला हो जाना कि ये तुम्हारे बाप की जागीर है, ये को तुम्हारा जाती विरसा है, कोई इससे तुमसे इसको नहीं छीन सकता, नहीं, ये भी एक सबब है जो कि मुसब्बिबुल असबाब ने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, राइट। और जो देने वाला है ना वो ले भी सकता है, जो देने वाला है वो ले भी सकता है। हर नेमत के बारे में हमें इसी तरीके से सोचना है, हर नेमत के बारे में। घर मिला है, अल्लाह का दिया हुआ है। औलाद मिली है, अल्लाह की दी हुई है। जिसने दी है वो ले भी सकता है, किसी भी वक्त ले सकता है, अनअनाउंस्ड भी ले सकता है, और बीमार करके और तकलीफों में मुब्तला करके भी ले सकता है, राइट। किसी नेमत को अपनी जागीर नहीं समझ सकते हम, किसी नेमत को हम अपनी जागीर नहीं समझ सकते, ठीक है ना। बाकी नेमतें तो बड़ी बड़ी टेंजिबल और फिजिकल नजर आती है ना। इल्म की नेमत तो एक इनटेंजिबल किस्म की नेमत है ना, वो बकायदा उसकी कोई शक्ल नजर नहीं आती, इल्म वाली नेमत की है ना, उसके कोई जिस्म नहीं है इल्म का। इल्म तो एक खजाना है जो कि इंसान के सीने में रहता है, जो कि इंसान के जहन में रहता है। इवन वो वाला खजाना जो कि इंसान के सीने में रहता है, जो मुहावरतन सीना कह देते हैं, वरना इंसान के दिमाग में रहता है, इंसान के जहन में रहता है, इवन वो वाला खजाना भी अल्लाह ताला वापस ले सकता है। तो ये जो जाहिरी खजाने हैं जो हमारे हाथों के अंदर खेलते हैं, या जो हमारी निगाहों के सामने रहते हैं, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या हैसियत है, ठीक है। इंसान डरता रहे, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं है कि कोई नफसियाती बीमार नफसियाती मरीज बन जाए, बल्कि डरने का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, शुक्र अदा करता रहे अल्लाह ताला का, और नेमतों को हरगिज हरगिज अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल ना करे, हरगिज अल्लाह की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल ना करे नेमतों को, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। आगे जो है वो मारिफ मसाइल में फरमाते हैं कि आयात सदर में, यानी ये जो मसदूर जो ऊपर लिखी हुई है, तो इनमें पहली आयत में कुफार की तरफ से रूह के मुतालिक एक सवाल और हक तआला की तरफ से उसका जवाब मजकूर है। लफ्ज रूह लुगात व मुहावरात में नीज कुरान करीम में मुतअद्दद मआनी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लफ्ज रूह को जो है वो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया है। मारूफ व मशहूर मानी तो वही है जो आम तौर पर इस लफ्ज से समझे जाते हैं, यानी जान, जिससे हयात और जिंदगी कायम है, ठीक है। यानी हमारे अंदर जो जो हमारे इस गोश्त को, इन हड्डियों को चलने फिरने की सलाहियत देती है जो चीज, जिसको कि हम उर्दू जुबान में जान भी कह देते हैं, ठीक है ना, यही रूह है। तो रूह की वजह से किसी चीज के अंदर जान आती है, जान का सबब रूह होती है। अगर रूह नहीं है, ठीक है, तो फिर जान नहीं है, सही है। कुरान करीम में ये लफ्ज जिब्राइल अमीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे नजला बिह रूहुल अमीनु अला कल्बिक, ठीक है, और सूरह कदर के अंदर भी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर व मा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूहु फीहा बिइज़्निर रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लाउल फजर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूह, ठीक है। तो वहां पर रूह का एक तर्जुम एक तफसीर जो है वो यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी बाकी मलाइका भी नाजिल होते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं, ठीक है। तो नज़ला बिहर रूहुल अमीन, तो रूहुल अमीन तो यहाँ पर तो 100% जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी कई आयात में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज रूह, और खुद कुरान करीम और वही को भी रूह के लफ्ज से ताबीर किया गया है। जैसे औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, हमने वही किया आपके ऊपर अपने हुक्म से रूह, रूह को हमने वही किया, ठीक है। तो यहाँ पर वो जान वाली रूह मुराद नहीं है, या यहाँ पर जो है वो ईसा अलैहि सलाम मुराद नहीं है कि हमने ईसा अलैहि सलाम को आपके ऊपर वही किया, बल्कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने वही किया नबी नबी अलैहि सलाम के ऊपर, ठीक है। ईसा अलैहि सलाम का जो लकब है वो रूहुल्लाह है, जैसे नबी अलैहि सलाम का हबीबुल्लाह है और मूसा अलैहि सलाम का कलीमुल्लाह है और अब इब्राहिम अलैहि सलाम का खलीलुल्लाह है, उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम का लकब क्या है, रूहुल्लाह। रूह से मुराद क्या है? तो यहाँ पर यानी इस आयत के अंदर जो लफ्ज रूह इस्तेमाल हुआ है कि जिसके बारे में उन लोगों ने सवाल किया था, तो इससे क्या मुराद है? हम आते हैं कि इसलिए यहाँ पहली बात गौर तलब ये है कि सवाल करने वालों ने रूह का सवाल किस मानी के लिहाज से किया था, वो क्या पूछना चाह रहे थे। बाज़ हज़रात मुफस्सरीन ने सियाक व सबाक की रियायत से ये सवाल वही और कुरान या वही लाने वाले फरिश्ते जिब्राईल के मुतअल्लिक करार दिया है, क्योंकि इससे पहले भी नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान में कुरान का जिक्र था। ठीक है, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि पीछे कुरान ही का जिक्र हो रहा है, तो और बाद की आयात में फिर कुरान मजीद का ही जिक्र है, तो इसके मुनासिब उसको समझा कि इस सवाल में भी रूह से मुराद वही और कुरान या जिब्रील अलैहिस्सलाम ही है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान को लाने वाले हैं, तो उनका भी जो है वो कुरान मजीद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो कुरान भी यहाँ पर मुराद हो सकता है और जिब्राइल भी अलैहिस्सलाम भी मुराद हो सकते हैं। और मतलब सवाल का ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही किस तरह आती है, कौन लाता है। ठीक है, कुरान करीम ने इसके जवाब में इस पर इक्तफा किया कि अल्लाह के हुक्म से वही आती है, तफसीलात और कैफियात जिनका सवाल था वो नहीं बतलाई। ठीक है ना, वो वैसे अल्लाह की तौफीक से हम जो मारफुल कुरान का मुकदमा शाम वाली क्लास के अंदर आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो रूह के आने की कैफियात जो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई और सहाबा कराम ने हमें बताई, तो वो भी हमने वहाँ पर पढ़ी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती थी तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती थी। कभी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आप के सामने आ जाते थे, कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो है वो परों की फड़फड़ाहट की जो है वो आवाज़ आती थी, और कभी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल फरमा रहे होते थे। तो ये मुख्तलिफ जो है वो कैफियात होती थी, और इसके नतीजे में नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत जो है वो कैसी होती थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त जो है वो इल्का फरमा रहे होते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शदीद तरीन बोझ होता था, शदीद तरीन बोझ होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बोझ भी बढ़ जाता था, अपना वजन भी बढ़ जाता था, हत्ता कि जिस जानवर के ऊपर अगर बैठे भी होते थे तो वो जानवर बैठ जाता था उस बदन से। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शदीद गर्मी वाली कैफियत तारी हो जाती थी, पसीने जो है वो नमूदार होने शुरू हो जाते थे, और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आते थे तो वो कैफियत नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज्यादा आसान कैफियत होती थी। ठीक है, तो ये सब तफसील जो है वो हम उधर पढ़ चुके हैं। तो ये लोग इस चीज़ के बारे में अगर सवाल कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने इसकी तफसील जो है वो इन लोगों को बताने का हुक्म नहीं किया, बल्कि बस इतना बता दिया कि ये आपके रब का हुक्म है। ठीक है, अच्छा, किसी ने यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत हमें दी है उसको हुक्म अम्र व नहीं में इस्तेमाल करना, क्या इसे नेमत का शुक्र अदा करना कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक उस नेमत को इस्तेमाल करना ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होगा उस नेमत में। जी, तो आगे फरमाते हैं कि लेकिन अहादीस सहीहा मरफूआ में, ठीक है, यानी ऐसी अहादीस जो कि सही हदीस हैं और जो कि नबी अलैहिस्सलाम से जिनकी सनद पूरी जाके आप से जाके के मिलती है वो हदीसें मरफू कहलाती हैं। तो ऐसी हदीसों में यानी बिल्कुल पक्की ठक्की जो हदीसें हैं ना, उनमें जो इस आयत का शान नुजूल बताया गया है तो तकरीबन इसमें सरीह है कि सवाल करने वालों ने रूह हैवानी का सवाल किया था, यानी बड़ी सराहत के साथ उन हदीसों के अंदर ये बयान किया गया है, बड़ी क्लियर तरीके से बयान किया गया है कि सवाल करने वालों ने रूह हैवानी का जिक्र किया था। हैवानी जिससे यानी वो वाली रूह जिससे कि किसी बेजान चीज के अंदर जान आती है, किसी बेजान चीज के अंदर हयात आती है, तो उसको रूह हैवानी कहते हैं। ठीक है, और मकसद सवाल का रूह की हकीकत मालूम करना था कि वो क्या चीज है, बदन इंसानी में किस तरह से आती और जाती है, और किस तरह इससे हैवान और इंसान जिंदा हो जाता है। ठीक है, सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के गैर आबाद हिस्से में चल रहा था, अच्छा, इन्होंने एक पता नहीं क्या लिखा है कि हम आपकी सारी क्लासेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्या करें? क्यों नहीं कर पाते, इसकी वजह क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं, तो फिर आपको बताते कि भाई आप क्या करें, हम आप क्या करें, बहुत अफसोस होती है भाई। आप कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, शायद आपको टाइम नहीं मिलता या कुछ सुख होती है, तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग्स जो है वो तो होती है ना घर के काम की वजह से, तो भाई जब रिकॉर्डिंग्स आती हैं ग्रुप के ऊपर तो उन रिकॉर्डिंग्स को आप काम काज के साथ सुन लिया करें, अल्लाह ताला इतनी आसानी फरमाई है तो उसको इस्तेमाल करें काम काज के साथ अपने, या तो हेडफोन लगाएं या वैसे ही जो है वो अगर आप अकेली हैं तो फिर उसको प्ले करके आप सुन सकते हैं आसानी के साथ। बहरहाल तो फरमाया सही बुखारी मुस्लिम है, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रवायत है कि मैं एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के गैर आबाद हिस्से में चल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक छड़ी खजूर की, यानी छड़ी खजूर की शाख की थी, तो आपका गुजर चंद यहूदियों पर हुआ। ये लोग आपस में कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, उनसे रूह के मुतालिक सवाल करो। दूसरों ने मना किया मगर सवाल करने वालों ने सवाल कर ही डाला, ठीक है ना, यानी एक ने कहा होगा कि इनसे पूछते हैं पूछते हैं, दूसरों ने मना किया, नहीं, ये कहते हैं ना कि यार गले मत पड़ो भाई, मत करो इनसे बातें, ठीक है ना, क्योंकि जब इनसे बात करोगे ना तो फिर खुद ही फंसोगे। इस तरह होता है ना, जो काफिर होते हैं जो मुनकर होते हैं वो कहते हैं यार अवॉइड करो अवॉइड करो, लेकिन सवाल करने वाले ने अवॉइड नहीं किया और उसने सवाल कर ही डाला। ये सवाल सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी पर टेक लगाकर खामोश खड़े हो गए, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने वाली है। ये लकड़ी गोया के असा की तरह की कोई लकड़ी होगी, कोई मजबूत लकड़ी होगी ना, कि भाई इंसान बाकायदा उसके ऊपर टेक लगा करके खड़ा हो सके, ठीक है। अब टेक जो है वो बहुत जगहों पर इस तरह से आता है कि टेक लगा के मुत्तकियन, तो अब या तो यानी पीछे की तरफ जैसे लकड़ी खड़ी की और पीछे को जाके उसके ऊपर जैसे कि कोई पिलर होता है उसके ऊपर इंसान टेक लगा के खड़ा हो जाता है, तो क्या कोई छड़ी इतनी मजबूत हो सकती है कि बाकायदा एक एक आदमी जो है वो उसके ऊपर टेक लगा के खड़ा हो जाए? या होता है कि हाथों में पकड़ी हुई होती है और हाथ में जो छड़ी होती है तो इंसान उसके ऊपर टेक लगा के आगे की तरफ गोया के झुक करके उस लकड़ी के ऊपर टेक लगा लेता है, अल्लाहु आलम। बहरहाल तो नबी अलैहिस्सलाम लकड़ी पर टेक लगाकर खामोश खड़े हो गए, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने वाली है। कुछ वक्फे के बाद वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़कर सुनाई, वयसअलूनक अनिर रूह, कि वो आपसे सवाल करते हैं रूह के मुतालिक। यहाँ जाहिर है कि कुरान या वही को रूह कहना ये कुरान की एक खास इस्तेलाह थी। एक ठीक है, तो अब हजरत एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बड़ी जाहिर सी बात है कि कुरान को रूह कहना या वही को रूह कहना ये तो कुरान की एक खास इस्तेलाह थी, ठीक है, यानी कुरान मजीद ने ही इसको ऐसे इस्तेमाल किया है। लोग लफ्ज रूह को कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना, यानी उस वक्त जो जो लोग थे ना, जो वो लफ्ज रूह को जो है वो वही के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, ये तो कुरान मजीद ने उसको वही के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस वजह से ना उन लोगों के सवाल को इस पर महमूल करना बहुत बईद है कि उन लोगों ने रूह का लफ्ज इस्तेमाल करके कुरान के मुताबिक सवाल किया होगा, ये बहुत दूर की बात है, बहुत यानी ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है कि वो लोग लफ्ज रूह को कुरान मजीद के मानी में इस्तेमाल करें, क्योंकि लोग कुरान मजीद के मानी में उसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे, ठीक है, आम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते थे, तो ये बात जो है ना वो दिल को नहीं लगती, ठीक है। अलबत्ता रूहें हैवानी व इंसानी का मामला ऐसा है कि इसका सवाल हर शख्स के दिल में पैदा होता ही है, ठीक है ना, यानी जो भी थोड़ा सा गौर करे, थोड़ा सोचे कि भाई कैसे जो है वो एक मुर्दा चीज जो है वो जिंदा हो जाती है, तो उसके जहन में ये सवाल आता है कि भाई कैसे, ठीक है। इसीलिए जमहूर मुफस्सरीन, इब्ने कसीर, इब्ने जरीर, कुर्तुबी, बहर मुहीत, रूहुल मानी, सभी ने इसी को सही करार दिया है कि सवाल रूह हैवानी की हकीकत से था। ठीक है, इस यानी इसी के बारे में सवाल किया जा रहा था। रहा ये मामला कि सियाक व सबाक में जिक्र कुरान का चला आया है, तो दरमियान में रूह का सवाल बड़ा बेजोड़ सा है, तो इसका जवाब वाज़े है कि इससे पहली आयात में कुफार व मुशरिकीन की मुखालफत और मुआनदाना सवालात का जिक्र आया है। ठीक है, उनकी मुखालफत और उनके जो यानी जो दुश्मन मुआनदाना मतलब यानी जो जो दुश्मनी में आकर के कोई कोई सवाल जवाब करता है ना, एतराजात करता है और जो है वो इश्काल करता है, तो उसका जिक्र आया है, जिससे मंजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा ए का दरबार ए रिसालत इम्तिहान करना था। ठीक है ना, यानी वो इस किस्म के जो हरकतें करते रहते थे, इस तरह की जो बातें करते रहते थे ना, नबी अलैहि सलाम के की रिसालत का इम्तिहान लेते थे वो इस तरीके से। ठीक है, तो पीछे भी यानी सियाक व सबाक में सिर्फ कुरान मजीद का जिक्र नहीं है, बल्कि उनके सवालों का भी जिक्र है ना, तो ये सवाल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, इसलिए ये बेजोड़ नहीं है। ठीक है, खुसूसन शान नुज़ूल के मुताबिक एक दूसरी हदीस सही मनकूल है, यानी एक हद सही हदीस मनकूल है इस आयत की शान नुज़ूल से मुताबिक। शान नुज़ूल क्या होता है कि कोई आयत जो है वो किस पसे मंजर में नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई। ठीक है, तो एक और हदीस भी हमें मिलती है इस आयत की शान नुज़ूल के मुताबिक, तो उसमें ये बात ज्यादा वजाहत से आ गई है कि सवाल करने वालों का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इम्तिहान लेना था। ठीक है, कि भाई क्या ये वाकई अल्लाह के रसूल, अगर वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर तो इनको इस हकीकत का भी पता होगा कि रूह क्या चीज होती है। ठीक है, चुनाचे मुसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत आन से रिवायत है कि कुरैश मक्का जो जा व बेजा सवालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते रहते थे। ठीक है ना, जा व बेजा का मतलब कि कोई मौका मिले तो भी सवाल करते थे, और बगैर मौके के भी सवाल करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि उनका सवाल का मकसद जो है ना, वो इल्म हासिल करना नहीं होता था, उनका सवाल का मकसद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को नाऊज बिल्ला नीचा दिखाना। ठीक है, तो वो हर जा व बेजा जो है वो सवाल करते रहते थे। उनको ख्याल पैदा हुआ कि यहूद इल्म वाले हैं, यानी कुरैश मक्का भी इसी तरह की हरकत करते रहते थे, तो उनको जो है ना ये ख्याल आया कि यहूद जो है ना ये तो इल्म वाले हैं, यानी इनके ऊपर तो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात व इंजील और जबूर और बहुत सारे सहीफे जो हैं वो यहूदियों के ऊपर नाजिल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के दरमियान सारे के सारे रसूल आए थे ना, तो उनको पिछली किताबों का भी इल्म है, उनसे कुछ सवालात हासिल किए जाएं जिनके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लिया जाए। इसलिए कुरैश ने यहूद से दरियाफ्त करने के लिए अपने आदमी भेजे, उन्होंने कहा कि तुम उनसे रूह के मुतालिक सवाल। ठीक है, तो ये वाकया भी सच साबित है कि कुरैश मक्का मदीना तैयबा आए थे, जहां पे यहूद रहते थे, वहां पे क्यों रहते थे, क्योंकि उनको अपने आसमानी किताबों से पता था कि आखिरी नबी जो है ना वो मदीना मनवर आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सारे आप आकर के यहाँ पे बसे हुए थे। अच्छा, और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर में ये भी नकल किया है कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सवाल में ये भी कहा था कि आप हमें ये बतलाएं कि रूह पर अजाब किस तरह से होता है। उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बारे में कोई बात नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी जवाब नहीं दिया। फिर जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुए, कुल रूहु मिन अम्र रब्बी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि जब किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम हो तो खामोशी इख्तियार कर, जब किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम हो तो बगैर इल्म के उसका जवाब देने की कोशिश ना करो। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली, जब इल्म हासिल हो गया, वही के जरिए से ही नबी अलैहिस्सलाम को सारा इल्म हासिल होता था, जब इल्म हासिल हो गया तब जो है जवाब दे दिया। अब वो उनको समझ में आए ना आए, वो माने ना माने, ये उनका मसला है भाई, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक किसी को कोई सवाल है अगर पूछना है तो। फिर लिख दिया है जिनको था ना कि हम कैसे क्लास सुने आपकी, तो उन्होंने फिर लिखा है कि काम के साथ कर सकते हैं पर नोट्स बनाते हो इसलिए फ्री टाइम का सोचते हो ताकि नोट्स भी बन जाए। क्या नोट्स के चक्कर में शैतान वो भी सुनने नहीं देता? हाँ, नोट्स बनाना जो है ना वो देखें, काम काज के साथ भी आप नोट्स बना सकते हैं। शैतान फिलहाल तो आपको जाहिर है नोट्स के बहाने से रोकने की कोशिश कर रहा है कि जी काम काज के दौरान नोट्स कैसे बनाओगे, इस वजह से सुनो ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने सवाल किया तो अब इसका फायदा आपको ये होगा कि हम आपको ये बता सकते हैं कि हम भी यही करते हैं और दूसरे लोग भी यही करते हैं, आप भी यही कर सकती हैं कि काम काज करने के साथ ही जो है ना वो कहीं पे एक कॉपी पेंसिल रख लें, ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे पानी वगैरह ना पड़ता हो बस। ठीक है, तो वहां पे कॉपी पेंसिल रख लें और जो जिस चीज के ऊपर आप क्लास सुन रही है ना तो उसमें कोई ऐसी बात आए जिसका कि आप नोट लिखना चाहती हैं तो उसी वक्त उसको पॉज करें और जाकर के जो है ना वो जल्दी से छोटा सा एक नोट लिख लें, सिर्फ दो तीन अल्फाज लिख लेना ये भी काफी होता है। ठीक है ना, और फिर जो है वो प्ले करके अपने काम में लग जाए। और फिर जब कोई ऐसी बात आए जहन में जिसका कि आपको नोट करने का ख्याल हो तो फिर पॉज करें और फिर जाकर के जो है वो दो चार अल्फाज जो है वो लिख लें और फिर काम में लग जाए। ठीक है ना, तो ऐसे हम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप भी कर लीजिए तो फिर क्या होगा, क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो पॉइंटर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में जब आपके पास थोड़ा सा भी टाइम फारिग हो उस वक्त फिर उसको अगर आप थोड़ा और फेयर कर लें, थोड़े और अल्फाज लिख लें तो फिर जहन में आपकी बात नई नई होगी ना, फ्रेश होगी बात, तो फिर आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वाकया सवाल मक्का मुकरमा में पेश आया या मदीना मुनव्वरा में पेश आया, तो ये इंशाल्लाह अपना अगली क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं। किसी और को अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्लास अपनी रोकते हैं। चलिए, आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।